एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, और एकत्र ज्ञान गोष्ठी में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी मेजबान।
और मैं हूँ दूसरा मेजबान। आज हम एक बहुत ही विशाल कहानी में गोता लगाने वाले हैं। ये कहानी है खुद जिंदगी की, पृथ्वी पर जीवन के अरबों साल लंबे अनोखे सफर की।
हाँ बिल्कुल, एक ऐसा सफर जो लगभग आप सोचिए 3.5 से 4 अरब साल पुराना है।
और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब शुरू कैसे हुआ और आज हम जहाँ हैं वहाँ तक का रास्ता कैसा था।
सही बात है, और इस गहरे सफर में हमारा गाइड कौन होगा? प्रोफेसर माइकल जे बेंटन की बहुत ही अहम किताब जीवन का इतिहास, यानी द हिस्ट्री ऑफ लाइफ।
अच्छा,
ये किताब हमें जीवन की वो पहली नन्नी सी चिंगारी से लेकर आज के इस जटिल संसार तक ले जाती है।
और ये जानना इसलिए भी जरूरी है मुझे लगता है क्योंकि आज हम कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज है, बायोडायवर्सिटी का नुकसान है।
बिल्कुल,
तो ऐसे में अपने ग्रह के जीवन के अतीत को समझना शायद हमें आज और आने वाले कल के लिए कोई रास्ता दिखा सके,
बिल्कुल
है ना?
हाँ, ये सिर्फ पुरानी हड्डियों या डायनासोर की कहानी नहीं है, ये तो एक तरह से हमारे अपने होने की कहानी है।
सही कहा। तो चलिए पहले लेखक से मिलते हैं, प्रोफेसर माइकल जे बेंटन।
हाँ
इनके बारे में कुछ बताइए।
हाँ, प्रोफेसर बेंटन वो ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और दुनिया के जाने माने पैलियोन्टोलॉजिस्ट, मतलब जीवाश्म विज्ञानी हैं।
अच्छा,
उनकी खासियत है वर्टिब्रेट्स, यानी रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों का विकास और जो महाविनाश हुए हैं ना धरती पर, उनको
हाँ
समझना।
हाँ मैंने सुना है उनका काम बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर डायनासोर और वो जो पर्मियन ट्रायसिक महाविनाश था।
बिल्कुल, द ग्रेट डाइंग, उस पर उनका काम कमाल का है। और वो सिर्फ जीवाश्मी नहीं देखते, वो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, स्ट्रैटिग्राफी, मतलब चट्टानों की परतें पढ़ना, इन सबको जोड़ते हैं।
अच्छा, कई अलग अलग फील्ड्स को मिलाकर देखते हैं।
हाँ, यही उनकी खूबी है। उन्होंने 50 से ज्यादा किताबें, सैकड़ों रिसर्च पेपर लिखे हैं, और जिस तरह वो मुश्किल वैज्ञानिक बातें भी एकदम साफ और दिलचस्प तरीके से समझाते हैं ना,
हाँ ये बहुत जरूरी है।
वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, कंप्यूटर एनालिसिस जैसी नई तकनीकें भी इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें एक पूरी कह सकते हैं होलिस्टिक तस्वीर मिलती है जीवन के इतिहास की।
तो फिर ये किताब जीवन का इतिहास, इसका सार क्या है, क्या बताती है ये?
देखिए, ये किताब पृथ्वी पर जीवन के लगभग 4 अरब साल के पूरे महाकाव्य को समेटती है। सोचिए जरा, वो पहली अनदेखी कोशिका से लेकर विशाल डायनासोर, हरे भरे जंगल और आखिर में हम इंसान तक।
4 अरब साल, सुनने में कितना लंबा समय लगता है।
है ना? और किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो हमारी आम सोच से थोड़ा हटके है। बेंटन कहते हैं कि जीवन का इतिहास कोई सीधी लाइन में तरक्की की कहानी नहीं है। ऐसा नहीं कि सब कुछ बस सिंपल से कॉम्प्लेक्स होता चला गया।
अच्छा, तो फिर कैसा था?
ये एक ज्यादा उतार चढ़ाव भरी कहानी है। इसे दो ताकतों ने शक्ल दी है, एक तरफ तो विकास की नई नई खोजें, नई क्षमताएं, और दूसरी तरफ भयानक तबाही वाली घटनाएं, खासकर वो बड़े महाविनाश।
विकास और विनाश दोनों साथ साथ चले।
हाँ बिल्कुल, बेंटन का तर्क है कि ये जो महाविनाश थे ना, ये सिर्फ अंत नहीं थे, ये एक तरह से रीसेट बटन जैसे थे।
रीसेट बटन कैसे?
ऐसे कि जब कोई बड़ी तबाही आई तो जो उस वक्त के सबसे ताकतवर जीव थे वो मिट गए।
हाँ,
तो इससे क्या हुआ, नए जीवों के लिए जगह बन गई, मौके खुल गए, विकास को अचानक तेजी मिली, नई दिशाएं मिली। तो ये तबाही भी एक तरह से रचनात्मक साबित हुई।
ये तो बहुत दिलचस्प बात है। तो फिर सवाल ये है कि इतनी तबाही झेलकर भी जीवन बचा कैसे रहा, फला फूला कैसे?
हाँ, यही मुख्य सवाल है, और बेनिंगटन का जवाब है 3 शब्दों में: रेजिलियंस यानी लचीलापन, रिकवरी यानी उभरने की क्षमता, और रीइन्वेंशन यानी खुद को नए सिरे से गढ़ने की कला।
अच्छा, हार ना मानना और बदलते रहना।
बिल्कुल, ये कोई सीधी दौड़ नहीं थी मंजिल तक, ये संयोग, मौकों और कभी कभी तो बस किस्मत का खेल था।
तो चलिए इस सफर के कुछ खास पड़ावों पे रुकते हैं। शुरू कहाँ से करें? जीवन की शुरुआत से।
हाँ, किताब के शुरुआती हिस्से हमें ले जाते हैं अरबों साल पहले की पृथ्वी पर। जीवन कैसे शुरू हुआ, ये अब भी एक पहेली है, कुछ थियरीज हैं।
जैसे?
जैसे कि शायद ये गर्म पानी के स्रोतों, वो जो समुन्द्र की गहराई में होते हैं, हाइड्रोथर्मल वेंट्स, वहां पर पनपा हो, या शायद आरएनए नाम के मॉलिक्यूल ने डीएनए से भी पहले अहम भूमिका निभाई हो। आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस कहते हैं इसे।
अच्छा,
खैर, शुरुआती जीवन बहुत ही सरल था, बैक्टीरिया जैसी अकेली कोशिकाएं जिन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं।
लेकिन फिर कुछ बड़ा हुआ है ना, वो ऑक्सीजन वाली बात।
हाँ बिल्कुल, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस का विकास। कुछ जीवों ने सूरज की रोशनी से खाना बनाना सीख लिया
और उससे निकली ऑक्सीजन
इतनी ज्यादा कि उसने पूरे ग्रह का केमिकल बैलेंस बदल दिया। इसे ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट कहते हैं। जो जीव ऑक्सीजन के आदि नहीं थे उनके लिए तो ये तबाही थी, पर इसने ज्यादा जटिल जीवन के लिए दरवाजा खोल दिया।
ये कमाल है, मतलब जीवन ने खुद ही अपने माहौल को बदल दिया।
सही कहा। और इसी के बाद एंट्री होती है यूकैरियोटिक कोशिकाओं की। ये वो कॉम्प्लेक्स सेल्स हैं जिनसे पौधे, जानवर और हम बने हैं।
और ये कैसे बनी, वो एंडोसिम्बायोसिस वाली थ्योरी?
हाँ, वो बहुत ही आकर्षक विचार है। कल्पना कीजिए, एक बड़ी कोशिका ने एक छोटी कोशिका को निगल लिया
और उसे बचाने के बजाय
उसके साथ मिलकर रहने लगी।
दोनों को फायदा हुआ। वो छोटी कोशिकाएं बाद में माइटोकॉन्ड्रिया बन गईं, हमारी सेल्स के पावर हाउस, और पौधों में क्लोरोप्लास्ट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं।
ये तो गजब की पार्टनरशिप है। मतलब विकास सिर्फ लड़ाई झगड़ा नहीं, सहयोग भी है। बिल्कुल, सहयोग और सहजीवन ये भी विकास का बहुत बड़ा हिस्सा है। इस साझेदारी ने जीवन को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनने में मदद की।
इसके बाद क्या हुआ? वो कैम्ब्रियन विस्फोट।
हाँ, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। करीब 54 करोड़ साल पहले, भूवैज्ञानिक समय के हिसाब से तो ये बस एक पल था, लेकिन इसी दौरान अचानक से जानवरों के लगभग सारे मुख्य बॉडी प्लांट्स, जिन्हें फाइलम कहते हैं, जीवाश्मों में दिखने लगे।
जैसे एकदम से बहुत सारे नए डिजाइन आ गए हों।
हाँ, जैसे प्रकृति ने एकदम से अपनी क्रिएटिविटी का दरवाजा खोल दिया हो। इसके कारण क्या थे ये बुरी तरह साफ नहीं है। शायद ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया था, या शिकार और शिकारी के बीच एक तरह की हथियारों की दौड़ शुरू हो गई थी।
और उस जमाने के जीव भी तो बड़े अजीब थे, वो बर्गेस शेल के जीवाश्म।
हाँ, कमार के थे। कुछ के 5 आंखें थीं, कुछ ऐसे थे जो आज किसी भी जीव से मिलते जुलते नहीं, जैसे ट्राइलोबाइट्स थे या पानी में तैरने वाले शुरुआती रीढ़धारी जीव।
पानी में तो धूम मची हुई थी, लेकिन जमीन पर आना वो तो मुश्किल रहा होगा।
बिल्कुल, वो अगली बड़ी चुनौती थी। किताब बताती है कि पहले पौधों ने हिम्मत दिखाई, उन्हें जमीन पर टिके रहने और पानी हासिल करने के लिए नए जुगाड़ करने पड़े।
जैसे कि?
जैसे अंदरूनी पाइपलाइन, मतलब वेस्कुलर टिश्यू, पानी ऊपर खींचने के लिए, लिग्निन जैसा मजबूत पदार्थ ताकि वो सीधे खड़े रह सकें, और क्यूटिकल, एक मोम जैसी परत ताकि वो सूख न जाएं।
और फिर पौधों के पीछे पीछे जानवर भी आ गए।
हाँ, पहले कीड़े मकोड़े जैसे आर्थ्रोपॉड्स, और फिर हमारे पुरखे कशेरू की जीव, बेंटन टिक्टालिक जैसे जीवाश्म का जिक्र करते हैं।
टिक्टालिक, हाँ वो कमाल का है, आधा मछली आधा जमीनी जानवर जैसा।
बिल्कुल, उसमें गलफड़े भी थे, स्केल्स भी थे, लेकिन साथ ही मजबूत फिन्स थे जो हाथ पैर जैसे बन रहे थे, गर्दन थी, फेफड़े भी डेवलप हो रहे थे। ये दिखाता है कि पानी से जमीन पर आने का संक्रमण कैसे हुआ होगा।
इस कहानी में आगे सरीसृप और डायनासोर आते हैं।
हाँ, कशेरू की जीवों में फिर सरीसृप यानी रेप्टाइल्स आए। उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज विकसित की, एमनियोटिक अंडा।
अच्छा, वो शेल वाला अंडा।
हाँ, इस अंडे ने उन्हें पानी पर निर्भरता से आजाद कर दिया। वो जमीन पर कहीं भी अंडे दे सकते थे, ये एक बड़ा कदम था।
और फिर डायनासोर का युग शुरू हुआ। प्रोफेसर बेंटन की तो ये स्पेशियलिटी है।
बिल्कुल, वो बताते हैं कि डायनासोर कितने विविध थे, कैसे रहते थे और फिर कैसे खत्म हुए। और ये जानना भी तो कितना रोमांचक है कि आज के पक्षी असल में डायनासोर के ही वंशज हैं।
हाँ, वो छोटे पंख वाले थेरोपॉड डायनासोर से विकसित हुए, जैसे आर्कियोप्टेरिक्स।
सही, आर्कियोप्टेरिक्स जैसे जीवाश्म इसके सबूत हैं। उनमें पक्षियों जैसे पंख भी थे और डायनासोर जैसे दांत और पूंछ भी। विकास बड़े अजीब रास्तों से चलता है।
लेकिन आपने शुरू में कहा था कहानी में तबाही का भी रोल है।
वो महाविनाश।
हाँ,
बिड 5, 5 सबसे बड़े महाविनाश। इनमें सबसे भयानक था परमियन ट्रायसिक वाला, जिसे द ग्रेट डाइंग कहते हैं, करीब 25 करोड़ साल पहले।
नाम ही डरावना है, क्या हुआ था तब?
माना जाता है कि साइबेरिया में भयानक ज्वालामुखी विस्फोट हुए। उनसे इतनी ग्रीनहाउस गैसें निकली कि ग्लोबल वार्मिंग हुई, समुद्र एसिडिक हो गए। नतीजा, समुद्र के 90% से ज्यादा प्रजातियां और जमीन के 70% से ज्यादा कशेरू की खत्म। जीवन लगभग मिट ही गया था।
बाप रे, 90%?
हाँ, और दूसरा सबसे मशहूर है केपीजी विलुप्ति, 6,66,00,000 साल पहले वाला, जिसने नॉन एवियन डायनासोर्स को खत्म किया।
ये वो एस्ट्रॉइड वाला है ना, मेक्सिको के पास।
हाँ, चिक्शुलूब इम्पैक्ट। इसका सबूत वो इरिडियम की परत है जो दुनिया भर की चट्टानों में मिलती है। इरिडियम शूद्र ग्रहों में ज्यादा होती है।
लेकिन ये कहना कि ये तबाही रचनात्मक थी, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? डायनासोर्स तो खत्म हो गए।
हाँ, ये सवाल उठता है। देखिए, बेंटन का मतलब अच्छा या बुरा नहीं है। जब डायनासोर्स खत्म हुए तो पृथ्वी पर एक खालीपन आ गया। वो जगहें, वो खाने का स्रोत जो पहले डायनासोर्स इस्तेमाल करते थे, वो खाली हो गए।
अच्छा।
और इस खालीपन को भरने का मौका मिला उन छोटे छोटे स्तनधारियों को जो तब तक डायनासोर के साये में जी रहे थे। महाविनाश ने पुराने खिलाड़ियों को हटा दिया और नए खिलाड़ियों यानी स्तनधारियों को आगे बढ़ने और फैलने का मौका दिया।
तो एक तरह से इकोलॉजिकल स्पेस खाली हुआ।
बिल्कुल, इस मायने में विनाश ने नए विकास के लिए दरवाजे खोले। किताब के आखिरी हिस्से इसी बारे में है। डायनासोर के बाद स्तनधारियों का युग आया। वो तेजी से फैले, अलग अलग माहौल में ढले, नए नए रूप विकसित किए।
और इसी दौरान फूल वाले पौधे भी आए।
हाँ, फूल वाले पौधों ने भी धरती का नक्शा बदल दिया। और इसी बड़ी कहानी के एक कोने में हमारी कहानी शुरू हुई, मानव विकास की। प्राइमेट से होमो सेपियंस तक, दो पैरों पर चलना, दिमाग का बड़ा होना, औजार बनाना।
और किताब का अंत हमें आज के दौर में लाता है।
हाँ, बेंटन आज के बायोडाइवर्सिटी संकट की तुलना अतीत के महाविनाशों से करते हैं। इसे वो संभावित छठा महाविनाश कहते हैं।
लेकिन इस बार वजह प्राकृतिक नहीं, हम हैं।
हाँ, मानवीय गतिविधियां, जंगलों का कटना, प्रदूषण, क्लाइमेट चेंज। किताब अतीत और वर्तमान के संकटों में समानताएं और अंतर दोनों दिखाती है। ये एक चेतावनी भी है और शायद जीवन के लचीलेपन की कहानी में एक उम्मीद भी।
तो इस पूरे 4 अरब साल के सफर से कौन से बड़े सबक मिलते हैं?
मुझे लगता है पहला सबक है, विकास में संयोग और अप्रत्याशितता, कंटिंजेंसी। ये कोई सीधी लाइन नहीं है, ये एक उलझी हुई झाड़ी है। जरा सा कुछ अलग होता तो शायद दुनिया बिल्कुल अलग होती।
सही बात है।
दूसरा सबक जो मुझे बहुत सोचने पर मजबूर करता है वो है तबाही की रचनात्मक भूमिका। मतलब सबसे बड़े विनाश ने ही नए जीवन के लिए रास्ता खोला।
हाँ, ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है, पर जीवाश्म यही बताते हैं।
तीसरा है पर्यावरण का कंट्रोल। जीवन का इतिहास पृथ्वी के इतिहास से जुड़ा है। जलवायु, महाद्वीप, हवा, सबने जीवन को शक्ल दी है।
और चौथा,
सहयोग और सहजीवन का महत्व। हम अक्सर संघर्ष पर फोकस करते हैं, पर एंडोसिम्बायोसिस जैसे उदाहरण दिखाते हैं कि मिलकर काम करना भी उतना ही जरूरी रहा है। तो आज के संकट ज्यादा गंभीर लगते हैं, और ये भी पता चलता है कि आज जो बदलाव हो रहे हैं उनकी रफ्तार कितनी तेज है और इसके पीछे हम हैं। ये हमें हमारी जिम्मेदारी का एहसास कराता है।
ये किताब वाकई ऐसे विचारों से भरी है जो सोचने पे मजबूर करते हैं। जैसे एक बात जो मेरे मन में रह गई,
बताइए,
कि जीवन का इतिहास सीधी तरक्की नहीं बल्कि बदलते हालात में टिके रहने, ढलने और खुद को फिर से खोजने की कहानी है। ये विकास की असलियत दिखाता है।
बिल्कुल। और एक और विचार है कि महाविनाश विकास के सबसे बड़े प्रयोग रहे हैं जिन्होंने नए किरदारों के लिए मंच साफ किया है।
हाँ, और ये भी कि जीवन का इतिहास पर्यावरण में बदलाव और उस पर जीवन की प्रतिक्रिया का इतिहास है। दोनों अलग नहीं है। ये हमारे और पर्यावरण की रिश्ते को दिखाता है।
और आखिर में, गहरे समय को समझना आज को समझने के लिए जरूरी है। हम अतीत से सीख सकते हैं कि जीवन ने पहले कैसे प्रतिक्रिया दी है। ये इतिहास से सबक लेने की बात है।
तो इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है?
बहुत मतलब है। पहला, ये हमें आज के संकटों जैसे क्लाइमेट चेंज को सही परिप्रेक्ष्य में देखने में मदद करता है, उनकी गंभीरता समझने में।
दूसरा, ये हमें प्रकृति की कद्र करना सिखाता है। हर जीव अरबों साल के सफर का नतीजा है, ये सोचकर ही सम्मान बढ़ जाता है।
तीसरा, ये हमें विनम्र बनाता है। इतने लंबे इतिहास में हमारा वजूद कितना छोटा है, हम मालिक नहीं, हिस्सा हैं।
और चौथा, ये हमें क्रिटिकल थिंकिंग सिखाता है। वैज्ञानिक कैसे सबूतों से कहानी बनाते हैं, ज्ञान कैसे बदलता है।
तो इस चर्चा से आपकी मुख्य सीख क्या रही?
मेरे लिए शायद जीवन का वो गजब का लचीलापन, रेजिलियंस, बार बार गिरकर उठना और पहले से ज्यादा मजबूत होकर, ये वाकई कमाल है।
और मेरे लिए शायद वो महाविनाशों की रचनात्मक भूमिका, ये सोचना कि तबाही नहीं नए अवसर पैदा किए, ये बहुत ही अलग नजरिया देता है।
हाँ, ये किताब हमारे सोचने का ढंग बदल सकती है। इसमें उम्मीद भी है, चेतावनी भी है।
बिल्कुल, जीवन की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हम एक बहुत गहरी विरासत का हिस्सा हैं और इसे समझना हमारे भविष्य के लिए जरूरी है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।